लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि ख्रिस्तीय एवं अन्य सभी धर्मों के अनुयायी तथा समस्त शुभचिंतक लोग विश्व में शांति और न्याय को बढ़ावा दें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। तेरे हाथों ने मुझे बनाया और गढ़ा, मुझे सद्बुद्धि प्रदान कर और मैं तेरी आज्ञाओं का अध्ययन करूंगा। तेरे भक्त मुझे देखकर आनंदित हैं, क्योंकि मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। प्रभु, मैं मानता हूं कि तेरे निर्णय न्याय संगत हैं। यह उचित ही हुआ कि मुझे अपमानित किया गया। तेरा प्रेम मुझे सांत्वना प्रदान करता रहे, जिससे मैं जीवित रहूं, क्योंकि तेरी संहिता मुझे प्रिय है। घमंडियों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, वे निराश हों। मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करूंगा। तेरे श्रद्धालु भक्त मेरा साथ दें, और वे भी जो तेरा विधान जानते हैं। मैं तेरी संहिता के पालन में दृढ़ बना रहूं, कहीं ऐसा न हो कि मुझे निराश होना पड़े। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 119वें भजन के 73 से लेकर 80 तक के पद। इन्हीं पदों की व्याख्या से विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 119वें भजन में हमें स्मरण दिलाया गया है कि जो कुछ ईश्वर करते हैं वह सब हमारी ही भलाई के लिए होता है। भले ही घमंडी हम पर आरोप लगाए, हमें अपमानित करें, तब भी हमें ईश्वर पर भरोसा रखना नहीं भूलना चाहिए, अपितु दृढ़ता पूर्वक ईश्वर के नियमों पर चलते जाना चाहिए। घमंडियों को यह कहकर माफ कर दिया जाना चाहिए कि वे कुंठित हैं, उनकी बुद्धि जड़ है। इसलिए भले ही वे झूठे आरोप लगाएं, हमें ईश आज्ञाओं का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की आज्ञाएं ही अपार आनंद प्रदान करती हैं। 119वें भजन के 73 से लेकर 80 तक के पदों में भजनकार ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार कर उनसे सद्बुद्धि की याचना करता है, ताकि वह ईश आज्ञाओं का अध्ययन कर सके, क्योंकि अध्ययन करने के बाद ही वह उनका वर्णन कर सकेगा। इन पदों में भजनकार ईश्वर के प्रति महान आस्था, निष्ठा और विश्वास की प्रकाशना करता है। वह ऐसा इसलिए करता है कि हम मनुष्य भी ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार करें, तथा उनसे अनवरत प्रार्थना करते रहें।
आपत्काल पड़े तब सुन ले विनती नाथ तुम्हारी, आपत्काल पड़े तब सुन ले विनती नाथ तुम्हारी। याकूब के ईश्वर का सुमिरन रक्षा करे तुम्हारी, आपत्काल पड़े तब सुन ले।
आगे 119वें भजन के 81 से लेकर 85 तक के पदों में भजनकार कहता है, मैं तेरी मुक्ति के लिए तरसता हूँ, मुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है, मेरी आंखें तेरी प्रतिज्ञा की राख देखती हैं, मैं कहता रहता हूँ तू मुझे कब सांत्वना देगा। मैं धुएं में सिकड़ी हुई मशक जैसा बन गया हूँ, किंतु मैंने तेरी संहिता नहीं भुलाई, मेरी यह दशा कब तक रहेगी, तू कब मेरे अत्याचारियों का न्याय करेगा। घमंडियों ने तेरी संहिता की उपेक्षा करते हुए मेरे लिए गड्ढा खोदा। श्रोताओं, जैसे जैसे भजन आगे बढ़ता है वैसे वैसे हम भजनकार के अनुभवों से अवगत होते हैं। स्मरण रहे कि स्तोत्र ग्रंथ का 119वां भजन अरबी भाषा के दीवान के सदृश ही एक महाकाव्य है, जिसमें भक्त ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखता है और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करता है। इसीलिए वह ईश्वर से यह प्रश्न करने के योग्य बनता है कि कब उसे प्रभु से सांत्वना मिलेगी, क्योंकि प्रभु की सांत्वना ही उसे सुख चैन से जीने देगी। प्रभु की सांत्वना के बिना वह धुएं से सिकड़ी हुई मशक मात्र रह जाएगा। उसका विश्वास इतना पक्का है कि सिकुड़ जाने के बावजूद, यानी कि अनेक कष्ट भोगने के बाद भी, वह प्रभु की संहिता को नहीं भुलाता। वह प्रश्न करता है कि उसकी यह दशा कब तक बनी रहेगी, और इस प्रश्न का उत्तर एक ही है कि जब तक प्रभु ईश्वर की दया दृष्टि उस पर नहीं होगी तब तक उसकी दशा दयनीय ही बनी रहेगी। उसकी दशा तब तक ऐसी बनी रहेगी जब तक कि प्रभु उसकी विनती सुनकर उसके घमंडी आतताइयों को दंडित न कर दें। वह यही प्रार्थना करता है कि ईश्वर उन घमंडियों को दंडित करें, क्योंकि वे प्रभु की संहिता की उपेक्षा करते हैं और संहिता का पालन करने वालों के लिए गड्ढा खोदते हैं। आगे 86 से लेकर 88 तक के पदों में भजनकार कहता है, तेरी आज्ञाएं विश्वसनीय हैं, मेरी सहायता कर, लोग मुझ पर अकारण अत्याचार करते हैं, पृथ्वी पर से मेरा अस्तित्व प्रायः मिट गया है, किंतु मैंने तेरी आज्ञाओं का परित्याग नहीं किया, अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मुझे नवजीवन प्रदान कर और मैं तेरी शिक्षा का पालन करता रहूंगा। श्रोताओं, उक्त पदों के द्वारा 119वें भजन का रचयिता हम सब से और युग युगांतर तक के मनुष्यों से यही कहना चाहता है कि जब कभी भी संकट हम पर छा जाता है, जब कभी भी हम कठिनाइयों से घिर जाते हैं, तो हम उनसे भयभीत नहीं होवें, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जीवन की हर चुनौती का सामना करें। इसी से हमारा विश्वास सुदृढ़ होगा तथा हम जीवन के पथ पर सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त कर पाएंगे। यह न भूलें कि प्रभु ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ हैं। वे कभी अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूलते। वे सत्य की राह पर चलने वाले को सांत्वना और साहस देना नहीं भूलते। ईश्वर की संहिता पालन करने वालों को, यानी ईश्वर के नियम पर चलने वालों को वे नव जीवन प्रदान करते हैं। श्रोताओ, हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं होती हैं जब हम ईश्वर के विलंब का कारण खोजने लगते हैं, यह सोचने लगते हैं कि हमारे निरंतर प्रार्थना करने के बावजूद प्रभु हमारी विनती पर कान क्यों नहीं दे रहे हैं। हम इस तथ्य पर विश्वास ही नहीं कर पाते कि भले ही देर से किंतु प्रभु ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। इसी सवाल के जवाब में ईश शास्त्र प्राध्यापक हंस कुंग कुछ उपयुक्त शब्दों की खोज करते हैं और कहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाने के लिए यह अनिवार्य है कि हम इन शब्दों का मर्म समझें और इनका वर्णन अपने जीवन में करें। श्रोताओं, ये शब्द हैं नव निर्मित अंतर्दृष्टि, अन्यों के प्रति सकारात्मक इरादे, वचनबद्धता, गरीबों, निर्धनों और विकलांगों के साथ पहचान और उनके प्रति एकात्मता, उदारता, दरिया दिली, निस्वार्थ किसी की मदद, दया, क्षमा और सेवा।
अपने पावन फल से भेजे तुमको परम सहारा, सियों के गिरे से वो तुमको सदा संभाले प्यारा।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। ईश्वर हमारे निकट रहते हैं, उनकी करुणा हमारी तकलीफों, पापों और आंतरिक बीमारियों को दूर करती हैं। उक्त बातें संत पापा फ्रांसिस ने संत मार्था के प्रार्थनालय में अपने मिस्सा बलिदान के दौरान सुसमाचार में कोढ़ग्रस्त व्यक्ति की चंगाई के संबंध में कही, प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। संत पापा ने कहा कि यह एक साधारण प्रार्थना है जिसमें हम विश्वास को पाते हैं। इसमें सच्ची चुनौती है जिसे कोढ़ग्रस्त व्यक्ति यीशु से चंगाई प्राप्त करने हेतु करता है। यह निवेदन हृदय की गहराई से निकलती है जिसके फलस्वरूप यीशु ख्रिस्त करुणा में हमारे लिए अपने कार्यों को पूरा करते हैं। वे हमारी तकलीफों को अपने ऊपर लेते और पिता के प्रेम में हमें रोग मुक्त करते हैं। प्रवचन में संत पापा ने कोढ़ी व्यक्ति की चंगाई पर चिंतन करते हुए पिता की करुणा की ओर विश्वासियों का ध्यान आकृष्ट कराया जो हम पापियों को जीवन देने हेतु इस धरती पर आए। संत पापा ने कोढ़ग्रस्त व्यक्ति की इस साधारण कहानी पर बल देते हुए कहा, यदि आप चाहते हैं, इसमें हम एक प्रार्थना को पाते हैं जो ईश्वर का ध्यान आकृष्ट कराता और एक समाधान लेकर आता है। उन्होंने कहा, यह एक चुनौती है लेकिन इसके साथ ही एक विश्वास भरा कार्य है। वह कोढ़ी व्यक्ति जानता है कि वे उन्हें चंगाई प्रदान कर सकते हैं, अतः वह अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करता है। संत पापा ने प्रश्न किया, क्यों उस व्यक्ति ने यीशु के पास इस तरह के प्रार्थना में मनोभाव रखे? क्योंकि उसने यीशु के कार्यों को देखा था, उसने यीशु की करुणा को देखा था। करुणा सुसमाचार में अभिव्यक्त वह विषय वस्तु है जिससे हम नाइम की विधवा, भले समारी के दृष्टांत और उड़ाव पुत्र के पिता में पाते हैं। वास्तव में करुणा का उद्गम स्थान हमारा हृदय है जो हमें किसी कार्य हेतु प्रेरित करता है। करुणा के कारण हम दूसरों के दुख में सहभागी होते, दूसरों के दुखों को अपने ऊपर लेते और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। यीशु अपने प्रेरिताय में इसी कार्य को करते थे। वे हमें सहिनता की शिक्षा देने नहीं आए, वरन वे करुणा में हमारे साथ, हमारे लिए तथा हमें जीवन देने आए। उनकी करुणा हमारे लिए इतनी अधिक है कि वे हमारे प्रेम के खातिर अपने आप को क्रूस पर निछावर कर दिया और अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। संत पापा ने कोढ़ी की छोटी प्रार्थना पर बल देते हुए कहा, अपने करुणा में यीशु हमारे साथ रहते हैं और हमारे दुख तकलीफों में शामिल होते हैं। वे अपने को हमसे विमुख नहीं करते, वे सहिनता का पाठ पढ़ाकर हमें यूं ही छोड़ नहीं देते, वरन वे हमेशा हमारी बगल में रहते हैं। संत पापा ने कहा कि कोढ़ी व्यक्ति अपने साधारण एवं चमत्कारी प्रार्थना द्वारा यीशु ख्रिस्त से चंगाई प्राप्त की। यीशु अपनी करुणा में हमें हमारे पाप में स्थिति में रहने पर भी प्रेम करते हैं। वे हमसे शर्म का अनुभव नहीं करते। संत पापा ने विश्वासियों को सलाह देते हुए कहा कि हम इस प्रार्थना को बार बार दोहराएं, हे प्रभु यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। हम इस बात पर विश्वास करें कि वे हमारे निकट रहते हैं और उनकी करुणा हमारी सारी मुसीबतों, पापों और आंतरिक बुराइयों को हमसे दूर कर सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने जलवायु परिवर्तन पर प्रस्तावित विधेयक का समर्थन किया है, जिसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन आपात स्थिति को राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करना। ऑस्ट्रेलिया के कैथोलिक धर्माध्यक्षों का कहना है कि वे जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय रूपरेखा के अनुकूलन और कार्रवाई पर एक प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन द्वारा स्थापित एक पारिस्थितिक एजेंसी कैथोलिक अर्थ केयर ऑस्ट्रेलिया के एक बयान से संकेत मिलता है कि धर्माध्यक्ष निजी सदस्यों के बिल के लिए सिद्धांत रूप में अपना समर्थन दे रहे हैं, जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाना है ताकि बिल को बिना किसी बदलाव के कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया में विनाशकारी आग ने अब तक 28 लोगों की जान ले ली है, 2500 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया है और जंगलों एवं खेतों को बुल्गारिया के आकार में बना दिया है। 1 अरब से अधिक जानवरों के मारे जाने का अनुमान है और देश के कुछ आदित्य वनस्पतियों एवं पारिस्थितिक तंत्रों को जलाकर भस्म कर दिया है। कैथोलिक अर्थ केयर निदेशक बर्नर्ड हॉलैंड ने कहा कि इसी तरह के बिल को अन्य देशों में सफलतापूर्वक पास किए जाने की क्रिया ने कठिन समय में आगे बढ़ने का रास्ता दिखलाया है। ऑस्ट्रेलियाई कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के पर्यावरण, न्याय एवं विकास आयोग के सदस्य धर्माध्यक्ष विंसेंट लॉन्ग ने प्रस्तावित रूपरेखा को बहुत ही सामयिक बतलाया। इस माह के आरंभ में धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने एक वक्तव्य जारी किया है, जिसमें उन्होंने आग से प्रभावित लोगों के लिए एकात्मकता एवं प्रार्थना की अपील की है। उन्होंने यह भी बतलाया है कि धर्माध्यक्ष आमतौर पर एक पल्ले अथवा धर्म प्रांतीय स्तर पर चुनौतियों का जवाब देते हैं। इस संकट को पूरी कलीसिया के पूरक और समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। उन्होंने सेंट विंसेंट दी पॉल सोसाइटी द्वारा शुरू किए गए एक दान अभियान का भी समर्थन किया है और कहा है कि वे व्यापक कैथोलिक समुदाय से प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवा एजेंसियों के साथ सहयोग करेंगे। उधर फिलीपींस की राजधानी मनीला के निकट सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ताल रविवार से ही धुआं और राख उगल रहा है। सरकार ने करीब 500,000 लोगों को आदेश दिया है कि वे ज्वालामुखी के 14 किलोमीटर के दायरे को खाली कर दें। फिलीपींस की कैथोलिक कलीसिया अपने सह नागरिकों से मिलकर ताल ज्वालामुखी से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने में सहयोग कर रही है। फिलीपींस के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने इस कठिन परिस्थिति में विश्वासियों से उदारता एवं एकात्मकता का आह्वान किया है। कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष ताओ के महाधर्माध्यक्ष रोमुला वालेस ने कहा है कि मिस्सा के दौरान विशेष दान संग्रह किया जाएगा और उसे स्थानीय कलीसियाओं में पीड़ित लोगों की मदद की जाएगी। दूसरी तरह की एकात्मकता होगी चिकित्सा सुविधा प्रदान करना एवं विस्थापित शिविरों में रहने वाले लोगों की मदद करना। बटंगास में करीब 35,000 लोग अपना घर छोड़कर शहर के 27 केंद्रों में रह रहे हैं। उन केंद्रों में लोगों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि 14 किलोमीटर का खतरा क्षेत्र खाली किया जाना जारी है। लिपा के महाधर्माध्यक्ष गिलबर्ट गर्जेरा, जिसके प्रेरित क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र आता है, उन्होंने बुधवार को कलीसिया की ओर से राहत सेवा दे रहे स्वयंसेवकों के साथ ख्रिस्त्याग अर्पित किया। उन्होंने प्रवचन में कहा, विश्वास अपने भाई बहनों की सेवा है, हम विश्वास को ग्रहण करते और दूसरों को बांटते हैं। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि वे इसे विश्वास का अवसर बनाएं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।